प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी को भारत की सदी बताते हुए कहा है कि अगले 25 सालों में नए भारत के स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचना है। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के अवसर पर मंगलवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा,
जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे, तब वैशाली में परिष्कृत लोकतंत्र का संचालन हो रहा था। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और वज्जी संघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे।
वेदों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में लोकतंत्र की जड़ों को हजारों साल पुराना बताया।
भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदों में कहा गया है, त्वाम विशो व्रणताम राज्याय त्वाम मिमाहा प्रदिशः पंच देवी, अर्थात राजा को सभी प्रजा मिलकर स्वयं चुने और विद्वानों की समितियां उसका निर्वाचन करें, ये वेद में कहा गया है, हजारों साल पूरे ग्रंथ में कहा गया है।
शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा की है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मुर्मू को समर्थन दिए जाने का मतलब भाजपा को समर्थन देना नहीं है।
ऐसे देखा जाए तो राजनीति जो आज महाराष्ट्र में चल रही है, मुझे तो विरोध करना चाहिए था। नहीं, ये भाजपा की है, मुझे विरोध करना चाहिए। इतने छोटे मन का मैं नहीं हूं। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ साल पहले भी प्रतिभा दहिया पहली बार एक महिला और वो भी महाराष्ट्र से कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था, हमें तो विरोध करना चाहिए था। लेकिन बाला साहब तब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी एक महाराष्ट्र की महिला और एक महिला वहां विराजमान होने जा रही है, तो मैं विरोध नहीं करूंगा। फिर बात आई प्रणव दा की ने, तब भी बाला साहब जी ने कहा था कि नहीं, देश की प्रतिमा ऊंची रखने के लिए एक काबिल व्यक्ति है, प्रणव दा एक काबिल व्यक्ति है, तो पक्ष में बीच में नहीं लाऊंगा, पार्टी की राजनीति में बाजू में रखूंगा। और शिवसेना ने उस वक्त भी प्रणव दादा को समर्थन दिया था। वही परंपरा कायम रखते हुए मुझे जो मेरे कई सारे आदिवासी शिवसैनिक माता और बहनों ने भी कहा था कि कहा रिक्वेस्ट की कि अगर आप समर्थन देंगे तो हमें खुशी होगी, तो उनका उनकी जो भावना है उसका आदर करते हुए मैं द्रौपदी जी को शिवसेना की ओर से समर्थन देता हूं।
शिवसेना ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय दल आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हैं। इससे विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की दावेदारी कमजोर हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा को भी अपने इस पुराने नेता का साथ देना चाहिए। नए संसद भवन में लगाए गए राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशालकाय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। इसमें शेरों के चरित्र और प्रकृति को बदलने का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। नए संसद भवन की छत पर लगे अशोक स्तंभ में सत्यमेव जयते का भी उल्लेख नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी इसको लेकर कहते हैं,
मैं विनम्रता से कहूंगा, यद्यपि ये सोच रही हो नहीं रही हो, उद्देश्य रहा नहीं हो, लेकिन सत्यमेव जयते यद्यपि इमारत पे है लेकिन चिन्ह पे कहीं भी हमको नहीं दिख रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको तो मैं समझता हूं अभी भी संशोधित किया जा सकता है, कर देना चाहिए। सत्यमेव जयते इस देश, इस महान देश का एक बहुत महान स्लोगन है। इससे बड़ा कोई हमारे लिए चिन्ह नहीं है, इससे बड़ा हमारे लिए कोई एक सोच नहीं है। आप देखते हैं इसको न्यायपालिका के पीछे आप देखते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के पीछे, जहां जो पद पे बैठता है सबसे बड़े पदासीन व्यक्ति के पीछे यही देखते हैं आप। तो उसके बाद इसको वंचित करना, यद्यपि मैं नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के रहा होगा, ये भी हम बहुत आदर पूर्वक कह रहे हैं कि ये तुरंत इसका संशोधन करना चाहिए, इस देश की आहुति में ये बहुत आवश्यक है।
सरकार ने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि मूल सारनाथ प्रतीक के मुकाबले नए संसद में स्थापित प्रतीक का आकार बढ़ा है, जिसके चलते ही यह अंतर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि वह न्यायपालिका को अपने तरीके से चलाने का प्रयास कर रही है।
मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये सरकार तीन आईज वाली सरकार है। डराना, भड़काना, इंटिमिडेशन, गैर कानूनी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस और दुष्प्रभाव इन्फ्लुएंस। इंटिमिडेशन, इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस, और ये सब विशेष रूप से दयनीय हो जाता है जब इसका दुरुपयोग किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण संस्था के लिए, यानी न्यायपालिका।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संदेश ने दबाव की बात कही थी। और अंत में बात बारिश और बाढ़ की, जिसके चलते देश के कुछ राज्य परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। गुजरात में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक यहां 69 लोगों की जान जा चुकी है। इस बार के मानसून में महाराष्ट्र में भी 84 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।